भेद है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आज फिर से आप भले चंगे हैं और आज परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, और मुझे आशा है कि आप अपने मित्रों को भी लेकर के आए हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपको फिर से बता दूं कि आज हम दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सब इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दानियल दर्शन हेतु समय स्थान को हमें बताता है और तब परमेश्वर के द्वारा उस दर्शन को प्राप्त करता है। हम आगे बढ़ेंगे और आज हम दानियल पर परिवर्तनकारी प्रभाव को देखेंगे। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन रेडियो के सम्मुख आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, उनके हृदय और मन विचारों को तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार और निराश हैं, परेशान और चिंतित हैं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, नौकरी को लेकर और प्रभु अपने जीवन में संतान सुख को लेकर, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 7 पद को निकाल लीजिए। दानियल 10 उसके 7 पद में लिखा है, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। यहां पर ध्यान दीजिए कि दानियल ने दर्शन देखा और उसके साथ अन्य लोग भी थे। मेरे विचार में तो कोई साधारण स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत भी इन पुरुषों पर ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकता था। यद्यपि दानियल के साथ और लोग भी थे, केवल उसी ने दर्शन देखा। अनेक व्यक्त घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को प्रभु यीशु की पहचान करवाता है, और दानियल के साथ भी वह ऐसा ही कर रहा है। योहन्ना रचित समाचार 16 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 7 और 8 पद में भी एक घटना है। दमिश्क के मार्ग पर प्रेरित पौलुस को भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ था। लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो वे सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ करके दमिश्क में ले गए। पौलुस अंधा हो गया था, उसने महिमा के प्रभु यीशु को देखा था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, अपने इन आंखों से परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? यह कहना बहुत ही कठिन है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस अंधा हो गया। आगे लिखा है दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। यहाँ पर देखिए दानियल अकेला ही रह गया था। उस परमेश्वर भक्त मनुष्य का यह एक अद्भुत अनुभव था। ऐसा अनुभव एक आनंददायक अनुभव है जो अनेकों को हुआ है। अब्राहम ने उर देश से कूच किया और अंत में वह और उसका संबंधी परमेश्वर के साथ अकेले था। मूसा को मिद्यान के जंगल के पीछे भेजा गया था। जलती हुई झाड़ी के पास वह परमेश्वर के साथ अकेला था। एलियाह करित के नाले पर अनुशासित हो रहा था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। यर्मिया पूरी तरह अकेला था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। यहोना बपतिस्मा देने वाले के साथ एकांतवास में परमेश्वर था। उसी रेगिस्तान में पौलुस 2 वर्ष अकेला था। यह परमेश्वर द्वारा उसका प्रशिक्षण था। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोना के साथ पतमोस टापू में अर्थात द्वीप में था। बहुत से लोग प्रार्थना सभा के लिए एकत्र होना चाहते हैं, परंतु मेरे मित्रों, क्या आपने कभी अकेले रहने का प्रयास किया है? वही तो परमेश्वर आपसे भेंट करेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन लेकर अकेले में चले जाओ और उसकी संगति करो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर के साथ में बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझसे पूछा जाता है कि रेडियो कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते समय क्या मैं श्रोतागण के सामने प्रचार करता हूँ? जी नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरे मित्र जो मेरे कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करते हैं वे साथ में होते हैं। मैं बंद दरवाजे के बीच स्टूडियो में होता हूँ। मैं परमेश्वर के साथ अकेला होता हूँ। यह एक महान अनुभव है। ऐसे ही में परमेश्वर इस दुर्बल मिट्टी को अपनी महिमा के काम के लिए उपयोग करता है कि मैं उसके वचन का प्रचार करूं और वह मेरे प्रचार के वचन को प्रभाव प्रदान करता है और इस वाणी को आप तक पहुंचाता है। इसके विपरीत अभक्त जन, अविश्वासी मनुष्य समाज प्रिय होते हैं। वे झुंड में रहते हैं। वे किसी के साथ शराब पीना चाहते हैं। वे अकेले रहना नहीं चाहते। वे ताश खेलना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा कि याकूब अकेला नहीं रहना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे कोने में अकेला करके उससे कुश्ती लड़ी और अंत में उसे अपनी पकड़ में रखने के लिए उसे लंगड़ा बना दिया। यहाँ दानियल अकेला है और उसे प्रभु यीशु का दर्शन होता है। वह कहता है कि उसका बल जाता रहा था। उस पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। हम दानियल 10 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ते हैं, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। लिखा है कि दानियल औंधे मुंह पड़ा रहा, अर्थात दानियल मूर्छित हो गया था। मैं नहीं जानता कि वह कितने समय तक मूर्छित रहा। प्रभु यीशु के प्रस्थान के बाद जब दानियल को होश आया तब उसने देखा कि एक स्वर्गदूत उसकी सुधि लेने के लिए वहां पर था। आगे हम पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। इस संदेश वाहक को देहधारी प्रभु यीशु ने भेजा था कि वह दानियल की विनती का उत्तर दे। वह कौन हो सकता है? मेरे विचार में वह जिब्राइल था, क्योंकि वही पहले भी उसके पास भेजा गया था। हो सकता है कि वह कोई और भी स्वर्गदूत हो। दानियल 10 उसके 11 में हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थर थराता रहा। पहले तो दानियल मुंह के बल भूमि पर गिरा पड़ा था, फिर उसे उठाया गया तो वह घुटनों पर था, अब उससे खड़ा होने को कहा गया है। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, यहाँ एक बार फिर दानियल से कहा जा रहा है कि वह परमेश्वर का अति प्रिय है। प्रसंगवश स्वर्ग में ऐसी प्रतिष्ठा होना अच्छा है। दानियल के पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मेरे मित्रों, यहाँ पर पल भर को पर्दा उठता है और स्वर्गीय युद्ध दिखाई देता है। इससे यह प्रकट होता है कि जो हमें दिखता है उससे कहीं अधिक इस जगत में हो रहा है। हम पर बहुत ही कम प्रकट किया गया है, परंतु हमें इससे अधिक जानने का प्रयास नहीं करना है। अदृश्य संसार में अच्छे और बुरे के मध्य युद्ध चल रहा है, ज्योति और अंधकार में युद्ध हो रहा है। यह परमेश्वर और शैतान का युद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर्गिक शक्तियां हैं और शैतानी शक्तियां भी हैं। लिखा है, पहले ही दिन को मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। स्वर्गदूत कहता है कि दानियल की प्रार्थना तुरंत सुन ली गई थी और वह संदेशवाहक भेजा गया था, परंतु मार्ग में उसे रोक लिया गया था, इसलिए वह दानियल के पास नहीं पहुंच पाया। यह एक आश्चर्यजनक बात है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री में जो लिखा है उस पर यह बात प्रकाश डालती है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। देखिए, यहाँ फिर शैतान की सेना के अलग अलग वर्ग हैं। उनके सामर्थ्य के कारण ही आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं। प्रार्थना वास्तव में एक सदा की आत्मिक लड़ाई है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 30 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है कि प्रार्थना करना उसके लिए आत्मिक युद्ध था। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। लवलीन रहो का मूल यूनानी अर्थ है संघर्ष करना। आपको और मुझे प्रार्थना में संघर्ष करना है। आज प्रार्थना एक औपचारिक अभ्यास रह गया है। मैंने जो प्रार्थनाएं सुनी है उनमें अधिकांश प्रार्थनाएं या तो मीठे मीठे बोल होती है या आध्यात्मिक विचारों का प्रस्तुतीकरण होती है, और मेरे विचार में हम दोनों ही प्रकार की प्रार्थनाओं के बिना रह सकते हैं। सच्ची प्रार्थना एक संघर्ष है, बैरी की सीमा को पार करके आत्मिक युद्ध अर्थात आत्मिक शक्ति का प्रवाह करना है। प्रार्थना मीठे मीठे बोल द्वारा परमेश्वर का मनोरंजन करना या बड़ी बड़ी बातें और आध्यात्मिक विचार को प्रकट करना नहीं है। मेरे प्रियो, हम आत्मिक युद्ध कर रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं। हम मन को शांति देने वाली बातें नहीं कह रहे हैं। स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21वें दिन तक मेरा सामना किए रहा। यह प्रधान कौन है? सांसारिक मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है। वह निश्चय ही शैतान का दूत था, अर्थात दुष्ट आत्मा। परमेश्वर के स्वर्गदूत व्यवस्थित हैं, तो शैतान के स्वर्गदूत भी व्यवस्थित हैं। उनकी एक पूरी सेना है, उस सेना में भी अफसर हैं, और स्पष्ट है कि इस स्वर्गदूत को शैतान के दूतों ने घेर लिया था, और उनका प्रधान फारस राज्य का प्रधान था। अतः उसे स्वर्ग से सहायता मांगनी पड़ी थी और मिकाएल को उसकी सहायता के लिए आना पड़ा। मिकाएल एक प्रधान स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, उसका रास्ता क्यों रोका गया? दानियल को फारस और यूनान के राज्यों की जानकारी दी जाएगी, जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे, और शैतान नहीं चाहता था कि यह जानकारी किसी मनुष्य तक पहुंचे, परंतु परमेश्वर चाहता था कि दानियल को यह जानकारी दी जाए। लिखा है, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि वहां एक युद्ध चल रहा था जिसमें फारस का राजा भी था। स्मरण रखें कि दानियल इस समय फारस में है। अब वहां स्वर्गिक सहायता की आवश्यकता है, और यह लगभग वह समय था जब दानियल को शेरों के मांद में डाला जाएगा। देखिए, दानियल की जानकारी के बिना ही परमेश्वर उसके पक्ष में काम कर रहा था। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों को यह समझना है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं, और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि शैतान कई बार हमारी प्रार्थनाओं का संबंध परमेश्वर से तोड़ देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तो शैतान हमारे विचारों को दूसरी ओर कर देता है, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना न कर सकें। सार्वजनिक प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभाओं को वह नीरस कर देता है। अर्थात नीरस होने का एक कारण यह भी है कि प्रार्थना करने वाले इस आत्मिक युद्ध से अनजान छोटी सी प्रार्थना कर देते हैं। हमें तो वास्तव में एक युद्ध करना है और उसे जीतना भी है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 3-5 पद में पौलुस फिर से कहता है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन एक ऐसा उत्तरदायित्व है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की है। आपको और मुझे यह समझना होगा कि हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ की कैसी घोर आवश्यकता है, और प्रभु यीशु की उपस्थिति की भी कैसी आवश्यकता है। हमें इस सत्य को भली भांति समझ लेना है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। कई बार हम लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, ताकि हम आत्मिक युद्ध में विजयी हों। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 10 अध्याय के 14 पद में, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यह पद दानियल की पुस्तक के शेष भाग को समझने की कुंजी है। इस अंतिम दर्शन का चित्रण करने वाले तीन लक्षण हैं। पहला, यह दर्शन तेरे लोगों के संबंध में है। मेरे विचार में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस भविष्यवाणी का विषय इसराइल ही है। यदि इसका कोई और अर्थ निकाला जाए, तो अर्थ और रचना का उद्देश्य ही निरर्थक होगा, क्योंकि लिखा है तेरे लोग। तेरे लोग का अर्थ स्पष्ट है कि वे इसराइली हैं। तब दूसरी बात को हम देखते हैं, दूसरे लक्षण को, यह अंत के दिनों में पूरा होगा। वह समय 70वां सप्ताह होगा जो महाक्लेश का समय होगा। महाक्लेश के अंत का समय अंत के दिन होगा। इन शब्दों को याद रखिएगा, अंत के दिन। इसी कारण से हमें बताया गया है कि यह अंत का समय होगा। तीसरी बात है कुछ दिनों के बाद। इससे हमें संकेत मिलता है कि यह समय कुछ लंबा है, या यूं कहें कि बहुत लंबा है। दर्शन की पूर्ति ही नहीं, दर्शन के घटने में भी समय है। अब हम इस दर्शन के दो भागों को देखेंगे। एक ऐतिहासिक अर्थात भविष्यवाणी का वह भाग जो पूरा हो गया है, और दूसरा जो पूरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं दानियल को विश्वास दिलाना और बल प्रदान करना, जो दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हमें मिलता है। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि दानियल पर इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे लिखा है दानियल 10 उसके 17 और 18 पद में, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया। आज जब मुझसे कोई कहता है कि उसने स्वर्गदूत को देखा और मैं देखता हूँ कि वह किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ, तो मैं जान लेता हूँ कि वह सच्चा दर्शन नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूत के दर्शन का तो वास्तव में दानियल पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मेरे प्रियो, यह सच है कि आज भी स्वर्गदूत हैं, लेकिन यदि आप स्वर्गदूत का दर्शन पाते हैं तो दानियल के समान आपके ऊपर में भी प्रभाव पड़ना चाहिए। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण से तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। मित्रों, अब एक और शैतानी प्रधानता आएगी, यूनान का प्रधान। दानियल से बातें करने वाला स्वर्गदूत लौटकर फारस के प्रधान से युद्ध करेगा। तब हम आगे देखते हैं दानियल 10 अध्याय के 21 पद में, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वर्गदूत दानियल का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित कराता है। लिखा है अर्थात व्यक्त किया गया है। दूसरे शब्दों में दानियल परमेश्वर के वचन के विपरीत न तो कुछ सुनेगा और न देखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र हथियार है जो परमेश्वर की संतान के लिए आत्मिक युद्ध में उपयोगी साधन है। इसे आत्मा की तलवार कहते हैं। हम में से कुछ विश्वासी अपनी तलवारों को काम में लेना नहीं जानते हैं। आज संसार में लोग अपने तलवार को लेते हैं, अपने हथियारों को लेते हैं, परंतु हमें कहा गया है कि हमारे पास आत्मिक तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। यही तलवार शैतान के उन सेनाओं को तोड़ सकता है और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को जांचें कि क्या आज हम परमेश्वर के वचन रूपी उस तलवार को महत्व देते हैं, क्या वह हमारे पास में है। आज दुख की बात तो यह है कि बहुत सारे मसीही परिवारों में बाइबल पाई जाती है, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं, उसमें धूल जम जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप मेरे वचन को सुन रहे हैं तो अपने बाइबल को निकाल लिए और उसे पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन रूपी हथियार दिया है कि इस संसार में रहते हुए उन आत्मिक सेनाओं का आप सामना कर सकें, अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है,
मारा है।
यीशु ने खून बहाया है,
बहाया है।
यीशु ने हमको बचाया है,
बचाया है।
यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा।
पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो।
डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है,
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो। यूं कहा था मरियम ने रोकर, कहा यीशु ने ऐ लाज़र आ निकल कब्र से बाहर, चार दिनों का वो मुर्दा पल में।